ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3,502 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई है। 9 बजे तक राज्य में 10.22% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से विधानसभा चुनाव में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन मतदाताओं को धन्यवाद दिया है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज सोनीपत जिले में गुहाना में एक जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकतंत्र के प्रति जोश और उत्साह का माहौल है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। गृह और सहकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की कार्यनीति पर चर्चा के लिए छत्रपति संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी की मराठवाड़ा इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। ये कार्यक्रम वियतनाम को भागीदार देश के रूप में उजागर करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के व्यापार और संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में दूरसंचार क्षेत्र के उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और टेली इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम पर नवगठित हितधारक सलाहकार समिति के साथ अलग अलग बैठकें की। बैठक का मुख्य बिंदु भारत को दूरसंचार उत्पाद विनिर्माण का केंद्र और व्यापार को आसान बनाना था। श्री सिंधिया ने कहा कि सभी उद्योग क्षेत्रों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार उद्योग संघों, वैश्विक और स्थानीय निर्माताओं को एक साथ काम करने की आवश्यकता है जिससे भारत को दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में अप्रवासी भारतीय कोटा के विस्तार की निंदा की है। इसे धोखाधड़ी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस कदम से अवैध तरीके से दाखिले होंगे और मेधावी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया में बाधा आएगी। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें मेडिकल कॉलेज में अप्रवासी भारतीय कोटे के विस्तार की पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में शनिवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी हिस्सों तथा विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिस्सानायके ने कल देर रात श्रीलंका की संसद को भंग कर दिया। इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी कि चुनाव इसी साल 14 नवंबर को होंगे। अगले महीने अक्टूबर की 4 से 11 तारीख के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। लेबनान में इजरायली सेना के हवाई हमले में हिजबुल्ला के वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई है। इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्ला के मिसाइल और रॉकेट संचालन का कमांडर था। 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल में भारत ने मालदीव को 3-0 से हरा दिया है। भारत इस प्रतियोगिता का मौजूदा चैंपियन है और सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।